ओम शांति। एक दिन एक प्रसिद्ध चोर, जो केवल चोर नहीं था परंतु चोरों का भी गुरु था, ऐसा मास्टर थीफ, उसके बेटे ने एक दिन उससे कहा कि मुझे भी चोरी सीखनी है। उस चोर ने उसे समझाया कि अब मैं चोरी तो नहीं करता, जीवन में चोरी के दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं घटी, ऐसी कुछ स्थितियां आई कि जिस कारण मैं वो चोरी करना मैंने छोड़ दिए। तब मैं आदमियों की चोरी करता था, अब मैं परमात्मा की चोरी करने में लगा हूं। यहां हर मनुष्य चोरी कर रहा है, हर एक के हाथ किसी और के जेब में है, किसी के दोनों ही हाथ दूसरों की जेब में है। तो उसे कहता है कि मैं अब चोरी तो नहीं करता, परंतु बेटा जिद करता है कि मुझे चोरी सीखनी है। वो कहता है ठीक है, कल सुबह हम दोनों साथ साथ जाएंगे चोरी करने। और वो दिन गुजरता है, रात होती है, बेटा अपने पिता के साथ राजमहल की एक दीवार के पास आते हैं। जो पिता था वो दीवार पर खुरेद कर ईंटें निकालना चाहता करता है। इतनी सहजता से, उतनी सरलता से ईंटें निकालता है कि वो बेटा देखकर आश्चर्यचकित होता है और कांपने लगता है, इतना सख्त पहरा। परंतु पिता ऐसे निकाल रहा है जैसे कोई साधारण सा कार्य कर रहा है। पिता अपने बेटे को कहते, तुम कांप मत, कांपना चोरों को शोभा नहीं देता, ये तो साहूकारों का लक्षण है। एक एक ईंट निकालकर दोनों राजमहल में प्रवेश करते, कड़ा पहरा, चारों ओर दिए जले हुए, संतरी पहरेदार घूम रहे हैं। महल के अंदर प्रवेश करने के बाद कई सारे तालों को बहुत ही सहज रीति खोलकर पिता और बेटा उस राजमहल के अंदर घुसते हैं। बहुत सारे तालों को तोड़ने के बाद एक और ताला बचा रहता है और खिड़की से झांक कर देखते एक बहुत ही कीमती अलमारी अंदर है। बेटा अब भी डरा हुआ, सहमा हुआ सा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसका। तो पिता उस ताले को भी तोड़ देते हैं और बेटे को कहते हैं, जाओ अंदर, अलमारी खोलो और उसमें जितनी कीमती वस्तुएं होगी वो सारी ले लो। बेटा अंदर घुसता है, जैसे ही बेटा अंदर घुसता है पिता दरवाजा बंद कर लेता है, ताला लगाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, चोर चोर चोर। बेटे ने सोचा ना था पिता इतना दुष्ट निकलेगा। चारों ओर आवाजें होती है, सारे संतरी यहां वहां भागने लगते हैं, चारों ओर गलियों में लालटेन लेकर नौकर, पहरेदार, द्वारपाल, प्रतिहारी यहां वहां घूम रहे। अब बेटे की ऐसी अवस्था और पिता ताला लगाकर जहां से आया था उसी द्वार से, उसी तालों के बीच से निकलकर राजप्रसाद के बाहर। अब उस बेटे की कैसी दशा होगी। बाहर ताले लगे हुए हैं, अंदर वो अकेला, चारों ओर सैनिक घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आवाज हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। उसकी जगह यदि हम हो तो सोच के देखना। उस अवस्था में वो बेटा पाता है कि जैसे क्या हो रहा है उसे भी समझ में नहीं आ रहा है, विचार जैसे रुक गए हैं, ऐसी सतर्कता जागी है अंदर कि सो भी नहीं सकता क्योंकि खतरा है, जागा हुआ है परंतु सोच भी नहीं चल रहा है। क्या करना है वो उसे पता नहीं, ऐसी घबराहट की अवस्था। उसमें एक नौकरानी उस द्वार को खोलकर अंदर प्रवेश करती है, वो चुपचाप खड़ा निर्विचार, पता नहीं क्या करना है। उस अवस्था में वो कुछ करने की कोशिश करता है परंतु उसे ये नहीं पता रहता है कि वो कर रहा है। नाखून से दरवाजा खुरेदने की कोशिश करता है, दासी को लगता है जैसे कोई चिपकली या और कुछ है। धीरे धीरे दरवाजा तोड़ता है, वो ताला, बाहर होता है और जैसे ही बाहर निकलता है सारे नौकर चाकर उसे देख लेते और उसके पीछे लगते और भागो भागो चिल्लाते हैं। वो इतना घबराया हुआ, वो भाग रहा है, भागने की चेष्टा कर रहा है परंतु वो भाग रहा है ये भी नहीं कहा जा सकता है, परंतु भाग रहा है। सारे सैनिक उसके पीछे, इतना तेजी से भागता है, इतना तीव्र गति से भागता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कौन है, परंतु आवाजें उसे जरूर सुनाई देती है। दूर भागते भागते कुएं के पास आता है, कुएं में पत्थर डालता है, दरख्त के पीछे छिपता है। सैनिक आते हैं, सोचते हैं शायद इसमें गिर गया, कूद गया, और ऐसा हाफते हाफते और भागते भागते ऐसे तैसे घर पहुंचता है। घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिता आराम से कंबल ओढ़े हुए लेटे हुए है। अति क्रोध में वो कंबल को खींचता है और कहता है कि ये क्या आप करते हो, मुझे ऐसे खतरे में डालकर आप यहां सो रहे हो। पिता कहते हैं तुम आए कैसे। वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता मैं कैसे आया। ऐसी एक अलर्टनेस, ऐसी एक अवेयरनेस में मन स्थित हो गया था, चारों ओर खतरा ही खतरा था, मैं तो था ही नहीं, कैसे आया, कैसे भागा, कैसे उन सैनिकों के चंगुल से छूटा, मुझे ही नहीं पता। परंतु इन दैट मोमेंट ऑफ अलर्टनेस, उस सचेतता जागरण की अवस्था में कुछ और घटित हो गया। अंदर की वह झलक दिखाई दे गई, उस माइंडफुलनेस की अवस्था में, उस परम जागरण की अवस्था में जहां ये देह का भान समाप्त हो चुका था, उस अवस्था में अनंत की वह झलक दिख गई। एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए जैसे वो रस आ गया और अब संसार की ये जो चोरी है इससे मेरा मन हट गया है। जिस अवस्था को मैंने अनुभव किया, चारों ओर खतरा, क्या हो रहा था मुझे भी नहीं समझ रहा था, केवल और केवल चेतना, और उसका सानिध्य, एक सेकंड में वो अवेयरनेस की स्टेज, वो चौकन्ना होने की अवस्था, वह चौकस अवस्था, उसमें न मालूम उसे कुछ दिख गया और वह दिखते ही सारे संकल्प, सारे विचार शांत हो गए। वह मौन हो गया उस मौन के मंदिर में। परमात्मा का अवतरण जैसे हो गया। जब जब संकल्प शांत हो जाए और जब जब विचार निर्विचार की ओर चलने लगे, ऐसी अवस्था में कुछ और घटित होता है। संकल्प जहां शांत हो जाए, वहां पर सत्य प्रकट हो जाता है। जो सत्य इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, पढ़कर नहीं जाना जा सकता, सुनकर नहीं जाना जा सकता, चिंतन कर नहीं जाना जा सकता, मनन कर नहीं जाना जा सकता, जैसे ही उस आंतरिक अवस्था में, वो तो चोरी के लक्ष्य से गया था, धर्म से उसका कोई संबंध नहीं, आत्मा परमात्मा की बातों से उसे कुछ लेना नहीं, फिर भी ऐसी अलर्टनेस की अवस्था में, एक क्षण की वो सोल कॉन्शियस स्टेज में, भचोर जो बनने वाला था चोर, उसे साक्षात्कार हुआ। जैसे क्या किया जाए जो सारे ही विचार शांत हो जाए। कॉन्शियसनेस के समीप हम चले जाए और उसका जो सत्य स्वरूप है उसका अनुभव करें, यही साधना है, यही तपस्या है, उस अनंत में स्थित हो जाना, उस बेहद में स्थित हो जाना, उस स्मृति स्वरूप अवस्था में स्थित हो जाना। तो आज की मुरली में क्या कह रहे हैं बाबा, अपने संकल्पों को क्या कर दो, धैर्यवत अपने संकल्पों को कम कर दो, जो आवश्यक है वही संकल्प आए, रेखाएं देख रहे हैं बाबा, स्टेज देख रहे हैं। स्थिति देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, मस्तक पर। तो ऐसी वो महारथी आत्माएं, ऐसी वो सिद्धि स्वरूप आत्माएं, ऐसी वो स्मृति स्वरूप आत्माएं, ऐसी वो बेगमपुर की बादशाह आत्माएं, ऐसी वो महावीर आत्माओं की निशानियां आज की मुरली में बाबा ने सुनाई है। सबसे पहले तो बाप दादा किसको देख रहे हैं आज, एक बाप, दूसरा ना कोई, ऐसी एक नामी अवस्था में जो स्थित है, और किसको देख रहे हैं, जो एक क्रस अवस्था में स्मृति स्वरूप है, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। संसार में बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं, हस्तरेखाएं देखते हैं। आज बाबा ने दो शास्त्रों का वर्णन किया है, एक तो ज्योतिष शास्त्र और दूसरा नाड़ी परीक्षण, भगवान कहता है कि मैं हस्तरेखाएं नहीं देखता, तो क्या देखता हूं राजू भाई, कौन सी रेखाएं देखता हूं? मस्तक की रेखाएं देखता हूं। आंखों में क्या देखता हूं? ज्वाला स्वरूप देखता हूं। और मुख में क्या देखता हूं? मुस्कान, कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी अवस्था को देखता हूं। इस संसार का सबसे बड़ा ज्योतिषी भी पर वही है जिसने इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमें समझाया है। जो ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, स्मृति स्वरूप आत्माएं हैं, उनकी अवस्था का आज वर्णन किया है बाबा ने। कैसी अवस्था होगी उनकी और कैसी अवस्था होगी उनकी? बोझ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, एक संकल्प अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देगा, ऐसा संकल्पों का बर्थ कंट्रोल जहां है, ऐसी आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। तो एक तो व्यर्थ संकल्प के बारे में कुछ बातें कही है, दूसरा बोल के बारे में कुछ बातें कही है, तीसरा बैलेंस के बारे में कुछ बातें कही है। ब्लिसफुल स्टेज के बारे में कुछ बातें कही गई है और ब्लेसिंग के बारे में कुछ बातें कही गई है। सी, पांच बातों की चर्चा आज की इस क्लास में करते हैं। यूनान में, ग्रीस, एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी अंधेरी रात में तारों को गिनता हुआ चल रहा था और अचानक एक कुएं में गिर पड़ा। पास ही में रहने वाली एक बुढ़िया आई, उसने देखा एक व्यक्ति पड़ा है अंदर और उसको बाहर निकलने में मदद की। उस ज्योतिषी ने उसे कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, पर तुम शायद ये नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं राजसी ज्योतिषी हूं, राजा का ज्योतिषी। मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए दो दो मास तक वेटिंग लिस्ट है, तुम कल मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा क्या है। तो वो क्या कहती होगी? दो फुट की दूरी पर जो कुआ है उसे तुम देख नहीं सकते, तो मेरा भविष्य क्या बताओगे? ये संसार के ज्योतिषियों की दशा है। इसके लिए बाबा कहते हैं, मैं ऐसे किसी के हस्त रेखाएं नहीं पढ़ता हूं, मैं तो मस्तक की रेखाएं पढ़ता हूं। मस्तक की रेखाओं में संकल्प की रेखा पढ़ता हूं। फेस से देखा जा सकता है, परखा जा सकता है व्यक्ति को, वैसे मैं मस्तक की रेखाएं देखता हूं। ऐसा भगवान भी ज्योतिषी है, परंतु वो कुशल, अति चतुर, साधारण ज्योतिषी नहीं है ये। वैसे ही एक दूसरे ज्योतिषी की कहानी है कि किसी गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मशहूर ज्योतिषी था, जो कहता था वो सत्य होता था। कुछ लोगों ने एक बार सोचा कि क्यों ना इसको फंसाया जाए, और उसके सामने कुछ लोग जाते हैं। एक व्यक्ति अपने कोट में कबूतर छिपा के ले जाता है और सोचते हैं इसे पूछेंगे ये जिंदा है या मरा है। अगर इसने कहा मरा है तो जिंदा बाहर निकालकर उसको दिखाएंगे, अगर वो कहे कि जिंदा है तो गर्दन अंदर ही दबा के मारकर उसे बाहर निकालेंगे। इस तरह ऐसे कुछ लोग उस चतुर ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ ये जिंदा है या मरा है। तो ज्योतिषी कहता है, इट इज ऑल इन योर हैंड, ये तुम्हारे हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो भगवान भी ऐसा चतुर ज्योतिषी है, कहां कब बताना है, क्या बताना है, कितना बताना है, वो उसे पता है। ये ज्ञान भी तो उसने वैसे ही दिया है, थोड़ा थोड़ा, कब कितना देना था समय समय पर बताया। यज्ञ जब कराची से यहां आया तो क्या कहा था बाबा ने, सब जला दो, फिर से एक बार जला दिया था, दोबारा यहां आने के बाद भी। कहां कौन सा ज्ञान, किस आत्मा को कितना आवश्यक है, कब आवश्यक है, सर्व आत्माओं को ज्ञान कैसे सुनाया जाए, उसे पता है। तो ऐसा ये चतुर ज्योतिषी, ऐसा भगवान स्वयं, ऐसा नाड़ी परीक्षण करने वाला, हरेक की बीमारी को समझ लेता है, वात पित्त कफ। नाड़ी परीक्षण अर्थात आधुनिक पल्स एग्जामिनेशन नहीं है, वो उनकी अपनी कुछ विधि है। तो संकल्प क्या कहा है बाबा ने संकल्प के बारे में, संकल्प एक बीज है, संकल्प एक खजाना है, और संकल्प एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा। संकल्प क्या है, ऊर्जा है, संकल्प ऊर्जा भाग्य की एनर्जी है, संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। संकल्प को व्यर्थ गवाना अर्थात भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना, संकल्प को व्यर्थ गवाना अर्थात स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करना, इतना संकल्प महत्वपूर्ण है। संकल्प खजाना है, जैसे उस खजाने को ध्यान से कार्य में लाते हैं, वैसे इस खजाने को कार्य में लाओ। जैसे वह बीज, ये संकल्प भी बीज है, सफलता के फल से संपन्न हो यह बीज। संकल्प की गति क्या कर दो, कम कर दो। विज्ञान कहता है कि एक दिन में अलग अलग आंकड़े बताते हैं, कितने विचार करता है, हाउ मेनी थॉट्स एक दिन में व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा संख्या कहते हैं 80,000 तक, कोई कहता है 60,000, कोई कहता है 50,000। एक घंटे में कोई कहता है 2,100, कोई कहता है 3,500, अलग अलग संख्याएं हैं। इतने तेजी से यह मन भाग रहा है, यह मेंटल नॉइस, यह रेसिंग माइंड इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है, एक संकल्प अभी भी नहीं टिक रहा है, ये संकल्प, वो संकल्प, वो संकल्प, ये संकल्प। कैसे ये मन शांत होगा, कैसे उस परम की झलक उसे दिखाई देगी, कैसे वह जो निराकार है इस देह में बैठा उसका अनुभव होगा, जब इतना तीव्र गति से मन भाग रहा है। इसी मन को क्या कर देना है, शांत कर देना, स्लो डाउन कर देना, धैर्यवत कर देना। ऐसे ही संकल्प हो जो सिद्धि को प्राप्त हो। और मुख्य रूप से संकल्प ऐसा विषय है कि जिस पर बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती है, वो चर्चाएं तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा व्यर्थ संकल्प पर आएंगे। संकल्पों पर बहुत सारे विषय है, संकल्प की शक्ति का प्रयोग, संकल्प क्या है, संकल्प कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ संकल्पों से क्या होता है, विज्ञान ने संकल्पों के साथ क्या किया है। अभी अभी किसी और क्लास में चर्चा की थी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स की, ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट्स जो साइंस ने किए है संकल्पों के साथ। झाड़ू पर क्या होता है, पानी पर क्या होता है, दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, मेंटल टेलीपैथी क्या है, असंख्य विषय जुड़े हुए हैं संकल्प और मन के साथ। मनसा सेवा में संकल्प का क्या महत्व है, संकल्प को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, शक्तिशाली संकल्प क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न विषय है। परंतु हम आएंगे व्यर्थ के ऊपर, व्यर्थ संकल्प कैसे है, ये किससे तुलना की है बाबा ने इनकी, बास जंगल है जैसा, एक से दूसरा जन्म लेता है, एक से दूसरा टकराता है, अग्नि प्रकट होती है। एक संकल्प एक व्यर्थ दूसरे व्यर्थ से टकराता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, विकारों को उत्तेजित करती है। प्राप्ति कुछ नहीं, संकल्प की गति तेज, जितनी संकल्प की गति तेज उतना एनर्जी वेस्ट हो रही है। इस संसार की सबसे अधिक सेवा वह आत्मा कर सकती है जिसके थॉट्स संकल्प शांत हो गए। कंटिन्यूअस माइंड चैटर, एक के बाद एक दूसरे विचार चल ही रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। उठ रहे हैं, बैठ रहे, जैसे अंदर कोई एक एयरपोर्ट है, जैसे कोई अंदर मार्केट है, सुपरमार्केट, जिसमें आवाजें ही आवाजें हैं बैकग्राउंड में। क्या बातें चल रही है पता नहीं, परंतु संकल्प चल ही रहे हैं। इन संकल्पों को कम कर देना, कम करते ही अद्भुत सी शक्ति प्रकट होने लगती है। वो संकल्प ही है, बाबा ने आज कहा है, कौड़ी से हीरा कैसे बन गए? एक ही संकल्प था, कौन सा? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। आत्मा की सत्ता को जैसे ही स्वीकार कर लिया, जीवन परिवर्तन हो गया, देह की सत्ता भूल गई। मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बन गए? किस संकल्प ने? मैं वारिस हूं, बच्चा हूं, अधिकारी हूं, कल्प पहले वाला। इसे एक संकल्प में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में ला लिया। कितने व्यसनों में डूबे हुए थे, कैसे व्यसनों को छोड़ दिया? संसार में लोग कितना प्रयत्न करते परंतु छूट नहीं पाते, यहां एक छोटे से संकल्प ने परिवर्तन कर दिया। कितना मूल्यवान, कितना कीमती वो संकल्प होगा। एक संकल्प बाबा ने दिया है, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। इस एक संकल्प ने बहुत सारी इच्छाओं की दौड़ को कम कर दिया। व्यक्ति शांति से सोता है, संसार में जाओ नींद नहीं है साहूकारों को, महल है, महल माड़िया है, दवाइयां है, सब कुछ है, पैसे है, परंतु नींद नहीं है। तो ये जो संकल्प था संतुष्ट रहो, कितना मूल्यवान हो गया। कितनी कीमत है इस एक संकल्प की, इस एक श्रीमत की, इस एक वाक्य की, कि जो आत्मा ने तुरंत स्वीकार कर ली कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं, संतुष्ट मणि हूं, और निश्चिंत हो गई, चैन की नींद आ गई। तो एक एक महावाक्य, एक एक वर्षन, कल की मुरली थी ना साकार, कदर नहीं है अविनाशी रत्नों की। गौर करो, बाबा ने कहा, एक एक वाक्य पर चिंतन करो, मनन करो, नोट करो। तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? कारण सबको पता है। सीधा हम इस टॉपिक पर आएंगे कि व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कैसे हो जाए, उसी के साथ साथ उसके कारण भी आ जाएंगे इसी प्रश्न में। तो क्या किया जाए? बहुत सारी विधियां हैं जो कि मुरलियों में बिखरी पड़ी हुई है, सभी बताएंगे क्या किया जाए कि जिससे व्यर्थ से मुक्त हो जाए। कम से कम 20 से 30 तो निकलनी चाहिए। क्या करें? स्वमान का अभ्यास। स्वमान सूक्ष्म नशा है, यह अहंकार नहीं है, अहंकार को नष्ट करने वाला है, आत्मा का सत्य स्वरूप है, उसमें बार बार स्थित रहने का अभ्यास करना, हर मुरली से समान को उठाना, अपना बनाना उसे। अपना बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। संसार में भी माइंड को स्लो डाउन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक सुनाई जाती है। एक तो मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं संसार के, वो कुछ बातें बताते हैं। दूसरे संसार के आध्यात्मिकवादी, अध्यात्मवादी, वो कुछ बातें बताते हैं। तीसरा यहां भगवान जो बातें बताता है संकल्पों को कम करने के लिए। संसार के जो लौकिक, वो कहते हैं प्राणायाम करो, वो कहते हैं एक्सरसाइज करो, योगा करो। अध्यात्मवादी कहते हैं मंत्र जाप करो, एक ही मंत्र को रिपीट करते रहो तो मन के संकल्प शांत हो जाएंगे। कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, जो संसार के साइंटिफिक लोग हैं, वो भी बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं जिससे माइंड की स्पीड थोड़ी कम हो जाए। होपफुल रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, बुरा नहीं सोचो, अच्छा सोचो हर परिस्थिति में। ऐसी अनेक विधियां संसार में। काउंटिंग करो, जब बहुत तेज संकल्प कर रहे आ रहे तो उल्टे 100 से लेकर तो 1 तक। बहुत सारी बातें संसार में, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। सीधा भगवान ने, बाबा ने जो कहा है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला है समान, क्योंकि समान में संकल्प बहुत शांत हो जाते हैं। सबसे तेज गति विकारों की है, उसमें भी काम विकार, उसमें जो आवेश है, जो जोश है, सबसे अधिक है। पैशन के जो थॉट्स है, लस्ट के जो थॉट्स है, सबसे तीव्र वेग से चलने वाले हैं। फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, विकारों के बाद निगेटिव की स्पीड बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो काम की, फिर दूसरे विकार, फिर निगेटिव, निगेटिव के बाद व्यर्थ, व्यर्थ के बाद साधारण की थोड़ी कम है, उसके बाद पॉजिटिव संकल्प, उसकी कम है, और सबसे अधिक कम है स्वमान की, क्योंकि स्वमान हायर कॉन्शियसनेस है। और भी एक अवस्था है जिसमें एकदम स्पीड कम है, वो कौन सी? परम धाम की वह अवस्था। वहां से यहां तक पहुंचना है, इस पोलैरिटी से इस पोलैरिटी तक। संकल्पों को कम कम करते जाना है, पॉजिटिव थॉट्स भी नहीं, उससे भी ऊपर स्वमान है, हायर कॉन्शियसनेस। तो पहला स्वमान, दूसरा द्वैत से नुकसान की जानकारी। व्यर्थ को समझो, कहां व्यर्थ है, कौन सा व्यर्थ है, व्यर्थ से क्या होता है। स्लोगन दिया है बाबा ने, व्यर्थ ना देखो ना सुनो ना करो। व्यर्थ से नुकसान। तीसरा, समर्थ संकल्पों का खजाना जमा करना है। जो स्टॉक है कहां मिलेगा? वो मुरलियों में। इसके लिए रोज की मुरली का क्या करना है? मनन चिंतन करना है। केवल पढ़ना और केवल सुनना नहीं। वो धारणा में आने के लिए, जैसे वो लोग मंत्र जाप करते हैं, रिपीट करते हैं कि एक चीज को बार 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 बार, तब तक जब तक कि वो अभिन्न अंग ना बन जाए, धमनियों में रक्त की तरह ना संचारित हो। उसी तरह यह मुरली भी हमारी धमनियों में रक्त की तरह बहने लगे। मुरली अमृत की धारा, गीत है ना नया एक, जो करती दुखों से किनारा। तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना। अगला, उस टॉपिक पर लिखना। लिखना एक बहुत अच्छी विधि है जिससे थॉट्स की स्पीड कम हो जाती है, व्यर्थ भी समाप्त होता है। लिखना, थॉट्स की स्पीड कम हो जाती है। टॉपिक पर लिखना, मुरली की पॉइंट्स याद करके लिखना, एक पॉइंट का विस्तार करना। ये प्रोसेस, ये क्रिया में ही संकल्प धीरे धीरे कम होते हैं। अगला, बिंदी लगाना, व्यर्थ को फुल स्टॉप। अगला, ज्ञान का ज्ञान सुनाना। हमारी हर कर्मेंद्रियों से हम इस ज्ञान में संलग्न हो जाए, चाहे सुनाना हो, चाहे सुनना हो, चाहे लिखना हो, चाहे जोर से बोलना हो और खुद ही सुनना, कुछ भी हो, इस ज्ञान के इर्द गिर्द स्वयं को सराउंड कर लेना है। और तीन पर को समाप्त करना, परचिंतन, परदर्शन और परमत, स्वदर्शन, स्वचिंतन और श्रीमत। अगला है श्रीमत की लगाम को टाइट करना। और आज की मुरली के स्लोगन वरदान से और एक चीज करना, समर्थ संकल्पों के लिए लीक कहां से होता है? अलबेलापन के स्क्रू को टाइट करना, प्रतिज्ञाएं तो करते हैं, दूसरा एक विधि है प्रतिज्ञा करना कि मुझे इस व्यर्थ से मुक्त होना है, श्रेष्ठ संकल्प है ये। परंतु प्रतिज्ञा बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु क्या हो जाता है, अलबेलापन नए नए रूप से आता है। शिवरात्रि आ रही है और क्या करेंगे, बिजी रखना स्वयं को, मन का टाइम टेबल बनाना, स्व चेकिंग करना, मन का टाइम टेबल बनाना, जैसे स्थूल दिनचर्या का टाइम टेबल है वैसे मन का भी टाइम टेबल सेट करना है सुबह सुबह, तो ये एक विधि हो सकती है संकल्पों को कम करने की। नहीं तो मन ऐसे ही दौड़ता रहता है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना। टाइम टेबल हो, दिनचर्या का टाइम टेबल हो। इच्छाएं, जितनी अधिक इच्छाएं उतना मन अशांत, उतना मन भागता है। इच्छाओं को कम करना। भय, भय एक ऐसी अवस्था है कि जो व्यर्थ को जन्म देता है। एंग्जाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी सब व्यर्थ को जन्म देने वाले हैं। मैंपन व्यर्थ को जन्म देता है। अपवित्रता, लास्ट संडे की मुरली में 5 सूक्ष्म स्वरूप बताए थे, आवश्यकताएं बेहद में चली जाती है तो व्यर्थ को जन्म देगी। एक्स्ट्रा प्रेम व्यर्थ को जन्म देगा, व्यर्थ वार्तालाप, अच्छा लगता है ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसी प्रेफरेंसेस वो व्यर्थ को जन्म देगा। मेरी कहां से आई, मैं मेरा, ये व्यर्थ को जन्म देगा। इस सब पर काम करना है। सरल स्वभाव यदि नहीं है, जटिलता है स्वभाव में तो व्यर्थ आएगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर है तो व्यर्थ आएगा। व्यर्थ के जितने मार्ग है, कभी किसी ने क्लास में बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें 40 खिड़कियां हैं, 29 खिड़कियां बंद है, एक ही खुली है और बाहर तूफान है, तो क्या होगा, उस एक खिड़की से ही तूफान अंदर घुस आएगा, सारी धूल और मिट्टी। हमारे जीवन में जितने ये लीकेजेस है, क्या इन सबको हमने बंद किया है? व्यर्थ में रुचि, व्यर्थ वार्तालाप में रुचि, व्यर्थ की चर्चा में रुचि दूर ले जाता है। पिछले संडे कहा था ना, भाई सिस्टर और ब्रदर्स को देखना अर्थात बाप से दूर, वो बाप के समीप नहीं। हर एक का व्यर्थ अलग अलग हो सकता है, इसके लिए स्वयं ही खोजना है मेरे जीवन में व्यर्थ कहां है, मन में व्यर्थ कब और कैसे आ जाता है, न चाहते हुए भी आ जाता है। बाबा ने कहा ऐसे संकल्प करो जो सिद्ध हो, सिद्धि स्वरूप बनो, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, स्वयं भी शीतल और दूसरों को भी शीतल करने वाले। तो ये थी संकल्पों की बात। दूसरी है बोल भी एनर्जी है। बोल भी क्या है, एनर्जी है। कैसे हो तुम्हारे बोल, अमृत वाणी हो, लौकिक वाणी नहीं, आकाशवाणी हो, दिव्य वाणी हो, आशीर्वचन हो, आशीर्वाद के बोल हो, सिद्धि वाले बोल हो, आत्माओं को सुख देने वाले बोल हो, आत्माओं को वरदान देने वाले बोल हो, समान युक्त बोल हो। जब कोई, बाबा ने कहा ज्यादा बोलता है, जोर से बोलता है, सतत बोलते रहता है, तो उसको समझाया जाता है बहुत बोलना, जोर से बोलना, शारीरिक हलचल बहुत ज्यादा करना। एक भाई अनुभव सुना रहे थे, नाम तो नहीं बताएंगे हम, पर साकार बाबा के समय के वो भाई है। बहुत सुंदर अनुभव आज ही हमने सुना नीचे। तो कह रहे थे कि एक बार पांडव भवन में वो गुब्बच, वो वहां पर एरोप्लेन के पास उन्होंने ऐसी छलांग लगाई जोर से, यहां से वहां, ऐसी युवा थे तो जोर से छलांग लगाई, तो ब्रह्मा बाबा ने देख लिया उनको। और उसके बाद में फिर जब बाबा आए हिस्ट्री हॉल में, तब रोजी बहन की माता जी जो थी उनको कहा कि आप जरा फरिश्ते कैसे चलते हुए चल के बताइए। तो उसने चल के बताया और फिर बाबा ने देखा बंदर कैसे चलता है, कौन चल के बताएगा। हाँ, फिर उस भाई की तरफ इशारा किया, तुम बताओ। तो उसको समझ में आ गया कि तो कितना शारीरिक हलचल है। हमने देखा कई सारी भाई बहने योग में बैठते हैं तो 10-15 मिनट तो सेट होने को ही लगता है। शॉल इधर तो उधर, बैग इधर से उधर, उधर से इधर, शॉल यहां वहां, इतनी शरीर में हलचल है। शरीर को भी साधना है। जब ये शरीर भी स्थित होगा तो ही आत्मा प्रतिबिंबित होगी इसमें। शरीर ही हलचल में इतना हिल रहे डुल रहे, कैसे आत्मा दिखेगी उसमें। शरीर को भी साधना है। तो बोल कैसे हो, श्रेष्ठ बोल, महान बोल, उस पर तो बहुत सारी चीजें कही जा सकती है। परंतु बाबा ने कहा गिनती के बोल हो, 2 शब्द, 100 शब्द, प्रभावशाली बोल हो। तो बोल भी एनर्जी है, उस पर भी काम करना है। कहां ज्यादा बोलते हैं उसकी चेकिंग, बोल को कैसे कम करें, इस पर वर्कशॉप होनी चाहिए एक, ये बहुत आवश्यक है। कहां से निकल आते हैं वो बोल, समझ भी नहीं आता है कुछ कुछ तो बोल को क्या करना, कंट्रोल करना। स्पीच को कंट्रोल कैसे करें, ज्यादा बोलने से स्वयं को कैसे रोका जाए, कहां बोलना और कहां नहीं बोलना, इस पर काम करना है। कहां मैं ज्यादा बोलता हूं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं बोलते हैं, ये एक अपने आप में एक टॉपिक है। हम किसी को दिखाने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए अचानक से बोलने लगते हैं, इस पर काम करना है, सोचना है। फिर बाबा ने कुछ बातें, 3 बातें कही, एक तो बैलेंस, दूसरा ब्लेसिंग और तीसरा ब्लेसिंग देना। ब्लेसिंग देने के बारे में कुछ कहा नहीं मुरली में। आनंद स्वरूप, आनंद सागर की संतान हम सब कौन है, आनंद स्वरूप आत्माएं हैं। बैलेंस जो है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, 3 तलों पर हम उसको डिवाइड करते हैं। और बैलेंस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी है जो हरेक को करनी है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा जीवन में, जीवन इधर से उधर, मनुष्य का मन अति में डोलने का उसका स्वभाव है। वो जो पेंडुलम होता है लोलक घड़ी का, इधर जाता है इधर जाता है, हमको लगता है वो दाए जा रहा है, परंतु दाए जाते समय वो बाए जाने की शक्ति, ऊर्जा और गति अपने अंदर भर रहा है, वो मोमेंटम जमा कर रहा है, कभी भी बीच में नहीं रुकता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी एकदम भोग में डूब जाता है तो एकदम त्याग कर देता है। आज भी कहा ना, थोड़े समय के लिए शक्तिशाली बन जाते हैं, चिंतन करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, व्यर्थ को ब्रेक, ये सारा चिंतन करते हैं। संगठित योग का प्रोग्राम होता है, संगठन का बल, संघ का बल मिलता है, फिर से कमजोर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस शायद नहीं है। शारीरिक बैलेंस में 3 बातें हैं, एक है भोजन, दूसरा है निद्रा और तीसरा है व्यायाम। अति सर्वत्र वर्जते, अति भोजन और अनाहार, दोनों में धोखा है। अति निद्रा, अनिद्रा, दोनों ही बैलेंस की अवस्थाएं नहीं है। अति एक्सरसाइज, इतना व्यायाम, इतना व्यायाम, जैसे यहां पर बॉडी बिल्डर बनने आए थे, ये भूल गए कि आत्मा की मसल्स को पावरफुल बनाना है, ना कि इस देह की, इतना जिम और इतना उस एक्सरसाइज के पीछे लग गए अति में, और दूसरी तरफ बैठे बैठे ही सब कुछ, सारा कारोबार, मोटापा, ओबेसिटी, उससे भी कई सारे रोग जन्म देते हैं। तो तीन बातें शारीरिक में, दो बातें मानसिक में, भावना और विवेक। एक तरफ है भावना, अति भावुक, और दूसरे तरफ है तर्क, लॉजिक, रीजन, सेंसिटिविटी, और एक तरफ अति लॉजिक, अति तर्क, हर चीज में ओवर थिंकिंग। ये एक सूक्ष्म माया है आज के युग में, ओवर थिंकिंग। एक ही विचार आया उसके ऊपर इतना सोचना, इतना सोचना, इतना सोचना, सोचते ही रहना, बात खत्म, कब की हो गई है, छोटी सी थी, राई से पर्वत बना दिया, पर्वत को भी पकड़े हुए है जोर से। ओवर थिंकिंग, क्या मैं ओवर थिंकिंग के विकार से ग्रसित तो नहीं हूं। दूसरा है मानसिक में, मास्टर और चाइल्ड। कहां मास्टर बनना है और कहां चाइल्ड बनना है, कहां बालक और कहां मालिक। फिर है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल बैलेंस में बहुत सारी बातें हैं, जिसका हमें केवल नाम आज गिना रहे हैं। सबसे पहला तो ज्ञान और योग का बैलेंस। ऐसा नहीं कि केवल चिंतन ही करते रहे, ज्ञान के ही पीछे गए और योग का चार्ट कम हो गया। ज्ञान और योग। दूसरा कर्म और योग। इस हफ्ते की जितने वरदान थे सब कर्म योग पर थे लगभग। तीसरा प्रेम, लव और लॉ। चौथा लव, प्रेम और शक्ति। पांचवा लव, और अगला लव, प्यारापन और न्यारापन, प्रेम से संबंधित यह तीन बैलेंस। कहां प्रेम पूर्ण हो जाना है, कहां शक्तिशाली हो जाना है, कहां विकराल रूप धारण करना है। अगला साधन और साधना। अगला स्वस्थिति और सेवा। सेवाओं में इतना खो ना जाए कि स्वस्थिति ही खो गई। लौकिक और अलौकिक, कथनी और करनी। तो ऐसे ये टोटल 14 है, शारीरिक 3, मानसिक 2 और 9 बाकी सारे। ये सारे के सारे बैलेंस हमें रोज चेक करने हैं, जीवन में है या नहीं है। बाबा ने आज बुद्धि की बैलेंस की बात की है। यदि बैलेंस, वो लोग बुद्धि के बैलेंस से, वो लोग बैलेंस से क्या क्या करते हैं, कलाएं दिखाते हैं। तुम तो आत्मा समझकर देखते हो, बोलते हो, तो तुम्हारे हर कर्म कला है, ये बुद्धि का बैलेंस है। तो बैलेंस की बात, संतुलन की बात यहां बाबा ने की है। उसके बाद की है ब्लिसफुल स्टेज, आनंद स्वरूप स्थिति। जो आत्मा व्यर्थ से मुक्त है और जिसके जीवन में बैलेंस है, वो स्वतः ही आनंद स्वरूप में है। और जो ऐसी आनंद स्वरूप में है, वो स्वतः ही क्या हो जाती है, सबको ब्लेसिंग देने वाली बन जाती है। और भी कुछ बातें बाबा ने कही है कि तुम सब कौन हो, शोकेस के शोपीस हो। हरेक की सेवा अपनी अपनी है। विदेशियों को बाबा ने याद किया है, कितने सारी दीवारों को तोड़कर लांग कर यहाँ आ गए, कितने अलग अलग धर्म की आत्माएं यहाँ आ गई, कितने सारे देशों की आत्माएं, रीति रस्म रिवाज की आत्माएं यहाँ आ गई। और एक अंतिम बात जो इस मुरली में बाबा ने कही है, कंबाइंड स्वरूप। क्या कहा उसके लिए, एक सेकेंड भी अलग नहीं हो सकते। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं तुम्हें अलग कर सके उस परमात्मा से। हर दिन मिलन की वेला है। तो सभी अभी इन बातों को याद करते हुए इसी स्वरूप में स्थित होना है। सबसे पहला व्यर्थ से मुक्त होने का संकल्प, समर्थ संकल्पों से अपने को भरना। दूसरा पहला समय संकल्प की एनर्जी जमा करना, दूसरा बोल की एनर्जी जमा करना, तीसरा बैलेंस। जितने केवल लिस्ट गिनाई है, परंतु क्या ये सभी बैलेंस मेरे जीवन में है, उसके ऊपर गहराई से चिंतन करना। उसके बाद ब्लिसफुल स्टेज और लास्ट में ब्लेसिंग देना। अच्छा, ओम शांति।